नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, नए युग के जीएसटी सुधारों का मकसद देश की समग्र कर और राजस्व प्रणाली का आधुनिकीकरण और सरलीकरण करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, बिहार में एनडीए सरकार केंद्र के पूर्ण सहयोग से एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में कर रही है काम। यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में भारत के 7 नए स्थान शामिल किए। फ्रांस में सरकार की मितव्ययिता योजनाओं के विरुद्ध बड़े पैमाने पर हुए हैं विरोध प्रदर्शन। और पीवी सिंधु चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के अंतिम 8 में। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कोलकाता में अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधार समिति के कार्यक्रम में इन सुधारों के लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य देश की कर और राजस्व प्रणाली को सरल और आधुनिक बनाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों से लागू जीएसटी ढांचे के पुनर्गठन से पहले राज्यों के सुझावों पर गहन समीक्षा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की थी। 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर दरों में कटौती की थी। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। आज हम कमर्शियल मालवाहक वाहनों की बात कर रहे हैं।
नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने वाणिज्यिक माल वाहनों पर लगने वाले कर में कटौती की घोषणा की है। डिलीवरी वैन पर जीएसटी दरों को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। वहीं देश के 65-70% माल यातायात को ढोने वाले ट्रकों पर भी जीएसटी दर 18% हो गया है। इस कटौती से भारत के परिवहन और रसद क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त जीएसटी को कम करने से ट्रकों पर पूंजीगत लागत और प्रति टन किलोमीटर की फ्रेट दरों को कम किया जाएगा। यह कदम देश के आपूर्ति श्रृंखला को और अधिक पुनर्जीवित करेगा, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा। जीएसटी सुधारों के अंतर्गत इस युक्तिकरण से कृषि सामान, सीमेंट, स्टील, एफएमसीजी और ई कॉमर्स डिलीवरी की आवाजाही सस्ती हो जाएगी। इस निर्णय से सड़क परिवहन क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को सहारा मिलेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नए जीएसटी सुधार इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगे। शिवांग के साथ आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि बिहार में एनडीए सरकार केंद्र के पूर्ण सहयोग से एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 11 वर्षों में बिहार को विकास परियोजनाओं और कार्यों के लिए 14,85,000 करोड़ रूपये से ज्यादा की सहायता दी है। बेगूसराय में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में बिहार को सिर्फ 2,80,000 करोड़ रुपए मिले थे। श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिहार यात्रा का उद्देश्य सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है।
यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था, यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था, यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था, यात्रा का विषय हर गांव हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था, यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वैश्विक मंच पर भारत का कद लगातार बढ़ रहा है। नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन में श्री सिंह ने कहा कि प्रयास और कार्य राष्ट्रहित के अनुरूप होंगे तो वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों के सहयोग से भारतीय रक्षा संपदा सेवा 18 लाख एकड़ से अधिक रक्षा भूमि का प्रबंधन कर रही है।
इंडियन डिफेंस स्टेट्स सर्विस आज आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलकर 18 लाख एकड़ से भी अधिक डिफेंस लैंड का मैनेजमेंट करती है और यह कोई मैं मानता हूं कि साधारण जिम्मेदारी नहीं है, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि हमारी जो डिफेंस लैंड है वो सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं है बल्कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म की एक वो फाउंडेशन है, वो बुनियाद है। आईडीएस देश भर में 61 छावनियों का संचालन करती है जिसमें लगभग 21 लाख से अधिक नागरिकों का भी निवास होता है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजिटल निजी डेटा संरक्षण नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है और आने वाले दिनों में वो प्रकाशन के लिए तैयार हैं। डिजिटल निजी डेटा संरक्षण फ्रेमवर्क की स्थापना डिजिटल निजी डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के अंतर्गत की गई थी ताकि लोगों के निजी डेटा की रक्षा की जा सके। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि संपूर्ण रूपरेखा को तैयार करने के लिए लंबे समय में 3000 से अधिक परामर्श आयोजित किए गए। श्री वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित नए नियम अगले महीने की पहली तारीख से लागू होंगे। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनी और हितधारकों के साथ कई बार चर्चा की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आईपी सारथी चैटबॉट और AI/ML आधारित उन्नत इमेज सर्च तकनीक शुरू करने का काम पूरा हो गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये नवाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के बौद्धिक संपदा परिदृश्य को बदलकर प्रत्येक स्टार्टअप और MSME के लिए तेज, निष्पक्ष और भविष्य के लिए तैयार आईपी पहुंच सुनिश्चित करने के विजन के अनुरूप है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सरकार लोगों को अवैध और नकली व्यापार से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मेघवाल ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि हाल ही में किए गए GST सुधारों से लोगों को काफी राहत मिली है। सेवा और सुशासन यानी जन सेवा तथा सुशासन के मंत्र पर आधारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति के लिए अथक प्रयासरत है। सेवा पर्व की विशेष श्रृंखला में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सरकार खेती में उन्नत प्रौद्योगिकी के जरिए किसानों के जीवन में बदलाव लेकर आई है।
हमारे विशाल खेतों में मौन क्रांति के अंतर्गत किसानों की बुद्धिमत्ता अब प्रौद्योगिकी की शक्ति से और भी मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि में तकनीक संचालित परिवर्तन हो रहा है जिससे किसान नवाचार, समावेशिता और समृद्धि से सशक्त हो रहे हैं।
भारत में हम एग्रीकल्चर सेक्टर में डिजिटल टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। हमारे किसानों को रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सकेंगे।
सरकार का डिजिटल कृषि मिशन हर कदम पर उपग्रहों, सेंसर और मोबाइल एप्स के माध्यम से किसानों को योजना बनाने, सिंचाई और फसल सुरक्षा में मार्गदर्शन कर रहा है। वहीं ई नाम प्लेटफॉर्म ने देश भर की 1000 से अधिक मंडियों को जोड़ा है जिससे किसानों को उनके घर पर ही पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी मूल्य मिल रहे हैं। आसमान में ड्रोन प्रगति के नए हल बन रहे हैं। AgriStack के अंतर्गत किसान ड्रोन और जियोटैग फसल डेटा, मृदा स्वास्थ्य, मौसम और कीट नियंत्रण पर वास्तविक समय की जानकारी देकर किसानों को सशक्त बना रहे हैं। नमो ड्रोन दीदी पहल के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन चलाने, खेतों में छिड़काव करने, फसलों का मानचित्रण करने और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके साथ ही वे नई आजीविका भी अर्जित कर रही हैं।
ड्रोन का उपयोग भी खेती में बहुत तेजी से प्रमोट हम कर रहे हैं। ड्रोन से होने वाली खेती की कमान महिलाओं को हमारी ड्रोन दीदियों को दी जा रही है। जो भी कदम है इनसे भारत के किसानों का तो फायदा हो गया ही, इससे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को भी ताकत मिलेगी।
पंजाब के गुरदासपुर की नमो ड्रोन दीदी जसवीर कौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है।
माननीय मोदी जी का मैं बार बार धन्यवाद करती थी। औरतों के लिए उन्होंने कुछ किया और उनको आगे लाए, ड्रोन दीदी का नाम दे के हमें अलग से पहचान बनाई, इसके लिए हम उनका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
हमारे अन्नदाता अब केवल अनाज उगाने वाले नहीं हैं, बल्कि खाद्य सुरक्षित भविष्य के लिए समृद्धि के बीज बोने वाले उद्यमी बन गए हैं। मनीष शिव झोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आज नई दिल्ली में आकाशवाणी परिसर में स्वच्छता शपथ का आयोजन किया गया। आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ दिलाई। उन्होंने शपथ लेने वाले सदस्यों से आग्रह किया कि वो स्वच्छता के लिए हर साल कम से कम 100 घंटे समर्पित करें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
मेहनत को नई दिशा मिल रही, तरक्की की राहें खुल रही, होगा विकसित भारत में हमारा योगदान, छूना है आसमान।
देश के मेहनतकश विश्वकर्माओं के जीवन में ये बदलाव लाई है पीएम विश्वकर्मा।
मैं चाहता हूँ विश्वकर्मा समाज इन पारंपरिक कार्यों में लगे लोग केवल कारीगर बनकर न रह जाए, बल्कि मैं चाहता हूँ वे कारीगर से ज्यादा वो उद्यमी बने, व्यवसायी बने।
आज कुम्हार, सुनार, मूर्तिकार और नाव निर्माता जैसे 18 तरह के कारीगर और शिल्पकार इस योजना की मदद से जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक टूल किट, 5% के ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का लोन और मार्केटिंग सहायता जैसे लाभ दिए जा रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा, सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि।
ये आकाशवाणी है। देश भर के 7 नए प्राकृतिक धरोहर स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। अब भारत के स्थलों की संख्या 62 से बढ़कर 69 हो गई है। नए शामिल स्थलों में महाराष्ट्र के पंचगनी और महाबलेश्वर स्थित डेकन ट्रैप, कर्नाटक के सेंट मैरी द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक विरासत, मेघालय की गुफाएं, नागा हिल ओफियोलाइट, आंध्र प्रदेश का एर्रा मट्टी टिब्बालू और तिरुमला पहाड़ियां तथा केरल की वर्कला चट्टाने शामिल हैं। फ्रांस में आज लाखों लोग मितव्ययिता योजनाओं के विरुद्ध देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। यूनियनों ने सरकार से आगामी बजट कटौती को वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शनकारी खर्च बढ़ाने, अमीरों पर ज्यादा कर लगाने और पेंशन में बदलावों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। खबरें खेल की दुनिया से। पीवी सिंधु चाइना मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने थाईलैंड की पोर्णपावी चोचुवोंग को आसानी से हरा दिया। वहीं पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने भी अंतिम 8 में कर लिया है प्रवेश। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, नए युग के जीएसटी सुधारों का मकसद देश की समग्र कर और राजस्व प्रणाली का आधुनिकीकरण और सरलीकरण करना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बिहार में एनडीए सरकार केंद्र के पूर्ण सहयोग से एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है। यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में भारत के 7 नए स्थान शामिल किए हैं। फ्रांस में सरकार की मितव्ययिता योजनाओं के विरुद्ध बड़े पैमाने पर हुए हैं विरोध प्रदर्शन। और पीवी सिंधु चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के अंतिम 8 में। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।